आज है 30 मई दिन शनिवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं सुशीला सिंह। फीफा ने पांचवी बार चुना से ब्लेटर को अपना अध्यक्ष। फरीदाबाद के अटाली गांव में हिंसा के बाद डर का माहौल।
लौटो नहीं शुरू किया क्योंकि वहाँ न रहने के लिए मकान सही है, ना कोई पीने के लिए पानी है, ना लाइट है, कोई सुविधा नहीं है। काफी दिनों से रहते आ रहे, बस कुछ शरारती तत्व हैं जो इस काम को कर रहे हैं, उसी में चोट लगी है। हमारे को 20 आदमियों को चोट लगी हुई है।
किस तरह कंप्यूटर डिजाइनिंग से मिल रहा है चंदेरी साड़ियों को नया रूप।
अगर उसे अपनी पसंद का कोई डिजाइन बनाना है तो हमें मेल के जरिए, फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हमको इमेज भेज देते हैं, तो उससे उसका टाइम बचा। जो साड़ी बनाई वो एक बार में उसकी मार्केट में बिक गई।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। सेप ब्लैटर को एक बार फिर फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। शुक्रवार को इस पद के लिए चुनाव हुए जिसमें पांचवीं बार उन्हें फीफा का अध्यक्ष चुना गया। इस पद की दौड़ में जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन भी थे। हालांकि पहले राउंड में हुई वोटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अमरीका में ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रॉस अल्ब्रिट नामक इस व्यक्ति ने द सिल्क रोड नाम से वेबसाइट बनाई थी जिसमें हर तरह की ड्रग्स बेची जाती थी। अधिकारियों के अनुसार इस कंपनी ने करीब 20 करोड़ डॉलर यानी कि 12 अरब रुपए के अवैध लेन देन किए थे। अधिकारियों के अनुसार इस वेबसाइट से ड्रग्स खरीदने वालों में से 6 लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि वो चरमपंथी संगठन बोको हराम से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उन 200 लड़कियों को भी छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे जिनका बोको हराम ने अपहरण कर लिया था। उन्होंने नाइजीरिया की सेना को और अधिक सक्षम बनाने पर भी जोर दिया। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा कि वो बुहारी का पूरी तरह से साथ देंगे। उन्होंने कहा, हमने बुहारी से कहा है कि वो जब भी तैयार हों तो हमें बता दें कि वो हमसे क्या चाहते हैं। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नाइजीरिया की सेना को क्या चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सेना के पुनर्गठन और प्रशिक्षण के साथ साथ खुफिया तंत्र को विकसित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड के शब्द। नाइजीरिया में चरमपंथी संगठन बोको हराम का काफ़ी दबदबा है, ऐसे में नए राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का उनसे निपटना सबसे बड़ी चुनौती होगा। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक बड़ा फार्म बिकने की तैयारी में है। यह फार्म पहले माइकल जैक्सन का हुआ करता था। इसकी शुरुआती कीमत 10 करोड़ डॉलर यानी करीब 6 अरब रुपए आंकी जा रही है। इस फार्म में एक चिड़ियाघर, अम्यूजमेंट पार्क, कई भवन और बड़े पार्क मौजूद हैं। जैक्सन ने यह जगह 1987 में खरीदी थी और उनके मरने से एक साल पहले 2008 में यह बिक गया था। जैक्सन ने अपने करियर के कई सफल गाने इसी फार्म में लिखे थे। सऊदी अरब के अधिकारियों के अनुसार पूर्वी प्रांत दम्मम में एक शिया मस्जिद के बाहर आत्मघाती धमाके में 4 लोग मारे गए हैं। इस्लामिक स्टेट ने पहले हमले की जिम्मेदारी ली है। दम्मम पूर्वी प्रांत की राजधानी है। सऊदी अरब के ज़्यादातर शिया आबादी इसी प्रांत में रहती है। एक हफ्ते पहले इस इलाके की एक शिया मस्जिद में हुए धमाके में 20 से अधिक लोग मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में क्यों कुछ परिवारों ने ली हुई है पुलिस थाने में शरण, बताएंगे आपको थोड़ी देर में। पहले बात करते हैं फीफा की। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कल फीफा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। चुनाव में सेप ब्लैटर को पांचवीं बार संस्था का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे पहले ब्लैटर के विरोधियों ने विवादों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं अमल चौधरी।
सेप ब्लैटर को दोबारा फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। शुक्रवार को इस पद के लिए चुनाव हुआ। यह पांचवीं बार है जब उन्हें फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष पद की दौड़ में जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। जीत के बाद ब्लैटर ने उनके लिए वोट और समर्थन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों को पसंद करता हूं, मुझे अपना काम पसंद है और मुझे आप लोगों का साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कमियां नहीं हैं, सभी में होती हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। आप सब ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास दिखाया उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लेट्स गो फीफा। फीफा के नए अध्यक्ष सेप ब्लैटर। पहले राउंड में हुई वोटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद प्रिंस अली बिन अल हुसैन ने अपना नाम वापस ले लिया था। चुनाव जीतने के लिए कुल वोट के 2/3 वोट यानी 140 वोट मिलने जरूरी थे, जिसमें ब्लैटर केवल 7 वोट से पीछे रह गए थे। नाम वापस लेते वक्त प्रिंस अली बिन अल हुसैन ने कहा,
मैं
बस आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहां तक पहुंचने की मेरी यात्रा बहुत ही सुखद रही। आप सबको जानना, आपके साथ काम करना और जिन चुनौतियों का आपने सामना किया उसे जानना मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा है। साथ ही उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया। आप लोगों ने बहुत ही साहस का काम किया, लेकिन मैं अपना नाम अब वापस ले रहा हूँ। सेप ब्लैटर के प्रतिद्वंदी जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन। हालांकि इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर के इस्तीफे की मांग उठ रही थी, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। यूरोपीय फुटबॉल संस्था UEFA के प्रमुख माइकल प्लैटिनी ने इस मुद्दे पर बुलाई गई आपातकालीन बैठक के बाद यह मांग की थी। वहीं ब्लैटर के समर्थन में फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जैक वार्नर ने कहा,
well, as black as you all have painted Blatter, he's still the FIFA president for another 4 years. So Blatter has been there on.
आप लोगों ने ब्लैटर के बारे में कितना कुछ लिखा, लेकिन आज वो फिर से 4 साल के लिए फीफा के अध्यक्ष बन गए हैं। बुधवार को अमेरिका में फीफा के 14 अधिकारियों पर गुटबाजी, धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी करने के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अधिकारियों पर $10 करोड़ यानी कि करीब 6.5 अरब रुपए रिश्वत लेने का आरोप है।
सेप ब्लैटर बने 5वीं बार फीफा के अध्यक्ष। ये थे अमल चौधरी। और अब रुख भारत का। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के अटाली गांव में हुई हिंसा के बाद खौफ का माहौल बना हुआ है। घटना के 5 दिन बाद अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से अब स्थानीय प्रशासन पर उंगलियां उठने लगी हैं। इस बीच आगजनी की घटना के बाद कई परिवार अपने घरों को छोड़कर थाने में शरण लेने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अब इस इलाके में शांति बहाल हो गई है। अटारी गांव से BBC संवाददाता सलमान रावी की ये रिपोर्ट।
हरियाणा के अटाली गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे तो देखने में सब कुछ शांत नजर आता है, मगर ये खामोशी काफी बेचैन करने वाली है। बस कुछ ही किलोमीटर पीछे बल्लभगढ़ के थाने में वो लोग रह रहे हैं जो 5 दिनों पहले अपने गांव में हिंसा का शिकार हुए थे।
नहीं, अभी लौटना नहीं शुरू किया, क्योंकि वहाँ ना रहने के लिए सही मकान सही है, ना कोई पीने के लिए पानी है, ना लाइट है, कोई सुविधा नहीं है। काफ़ी दिनों से रहते आ रहे, बस कुछ शरारती तत्व हैं जो इस काम को कर रहे हैं।
आपको भी चोट लगी?
हाँ, उसी में चोट लगी है। हमारे को 20 आदमियों को चोट लगी हुई है, कुछ एडमिट है हॉस्पिटल में।
थाने में शरण ले रहे लोगों की जमात में मौजूद जाकिर हुसैन का कहना था कि जिस वक्त गांव में तनाव बढ़ रहा था वहां थाने के SHO भी मौजूद थे, जो वहां से फोर्स को लेकर चलते बने और गांव उपद्रवियों के हवाले हो गया।
जो झगड़ा हो गया थाने नवाज असर के टाइम, वो बाबूलाल डाटे थाने जो SHO था थाना छाया से, वो फोर्स को लेकर चला गया था और तब ही एकदम पथराव और हमला।
अटाली के रहने वाले जफरुद्दीन को मलाल है कि उनके लिए जो कुछ हो रहा है वो सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन द्वारा ही किया जा रहा है, मगर उस गांव से जहां उनके पूर्वज पिछले 400 सालों से रहते आ रहे हैं कोई भी उनका पुरसाने हाल बनकर नहीं आया। गांव के लोग मुआवजे की मांग तो कर रहे हैं, साथ ही वो थाने के उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो घटना के दिन गाँव में मौजूद तो था मगर उन्हें बचाने के लिए उसने कुछ नहीं किया।
मजबूरी में मतलब यहाँ पड़े हुए हैं, कोई अच्छी बात
नहीं। हमारे पास ऑप्शन नहीं,
पहनने कपड़े नहीं है हमारे पास,
यहाँ रहने का तो हमें कोई लास्ट ऑप्शन है, इसलिए रहना पड़ रहा है हमें। नहीं तो हमें कोई मर्जी थोड़ी रह रहे हैं, मजबूरी है। ना सरकार की तरफ से ना किसी तरीके से हमें कोई ना सहायता मिल रही है, सिक्योरिटी उन्हें दी जा रही है, हमें कोई नहीं। हमें तो यहाँ पर एक बंधक बना के रखा जा रहा है। बंधक ही है सर, हमारा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, हमें तो यहाँ आगे बाहर भी नहीं जा सकते।
थाने में शरण ले रहे लोगों का कहना है कि उन्हें स्थानीय पुलिस पर अब भरोसा नहीं रह गया है।
कुछ हो न रहा, कुछ भी अभी तक FIR तक मुकम्मल नहीं हुई है हमारी, कुछ भी ना हुआ, एक ही गिरफ्तारी ना हुई। अब हमने वो ऊपर एक भाई कमांडो पुलिस भेजो, कुछ भेजो, पुलिस पर कुछ भरोसा नहीं है। पुलिस ने ये कांड कराया है, समझे, पुलिस की लापरवाही से सब कुछ हुआ है, ये मिली भगत से पूरी तरीके से।
घटना को घटे 5 दिनों से ज़्यादा बीत चुके हैं और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में खासी नाराज़गी है। मैंने फरीदाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त विष्णु दयाल से पूछा कि अब तक पुलिस इस मामले में क्या कर रही है।
गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, जल्दी हो जाए।
तो ये जो घटना घटी, ये एक्चुअली इसके पीछे था क्या?
इसके पीछे बड़ी छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात थी, छोटी सी बात को ही बहुत बड़ा बना दिया गया। गांव के लोग, दोनों समुदाय के लोग बैठ गए थे, उनका आपस में समझौता, राजीनामा भी हो गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्व तो हर उसमें आ ही जाते हैं जो इस मौके की फिराक में रहते हैं। अब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि माहौल तनावपूर्ण हो जाए।
फरीदाबाद के प्रशासन का दावा है कि इस इलाके में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और कुछ परिवार अपने घरों को अब लौट रहे हैं। एक छोटी सी घटना ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया और सदियों से मिलजुल कर रहते आ रहे अटाली के लोगों के बीच दरार पैदा हो गई। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि ये सब कुछ आने वाले पंचायत चुनाव की वजह से ही हुआ है, ताकि नेता माहौल का फायदा उठा पाए। सलमान रावी, BBC, अटाली गांव, फरीदाबाद।
BBC इंडिया बोल। ऐसे वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं जो साल भर में सांसद निधि का एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाए हैं। सांसदों को इलाके के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। पिछले एक साल में सांसद निधि का एक रुपया भी खर्च न कर पाने वाले सांसदों की संख्या 298 है। राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। इस शनिवार BBC इंडिया बोल का विषय यही है कि जनता के नुमाइंदे जनता पर ही धन क्यों नहीं खर्च कर पाते हैं, आखिर वजह क्या है? मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो श्रोताओं, आज 7:30 बजे इंडिया बोल में भाग लेना ना भूलिएगा। वहीं चंदेरी की मशहूर साड़ियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मध्य प्रदेश के चंदेरी कस्बे में बनाई जाने वाली ये साड़ियाँ कुछ सालों पहले अपना अस्तित्व खो रही थीं, लेकिन अब कंप्यूटर डिजाइनिंग और इंटरनेट के आने से इस साड़ी ने बाजार में अपनी धाक एक बार फिर जमा ली है। कैसे हुआ यह संभव, सुनिए चंदेरी से BBC संवाददाता शालू यादव की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चंदेरी कस्बे में बुनकरों के दिन की शुरुआत जल्दी ही होती है। हर सुबह 8 बजे ये बुनकर साड़ियां बुनने के लिए लूम पर बैठ जाते हैं। बाहरी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है और सूरज की किरणें रेशम के धागों को चीर कर फर्श पर पड़ रही हैं। इस साड़ी की खूबसूरती इसके पीछे लगी मेहनत का खूब बयान करती है। चंदेरी की एक साड़ी को हाथ से बनाने में 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का समय लग जाता है। वैसे तो चंदेरी में करीब हर घर में एक लूम जरूर है, लेकिन ये लूम एक ऐतिहासिक महल के अंदर है। 15वीं शताब्दी में बना राजा रानी महल अब बुनकरों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के द्वारा महल में शुरू किए गए चंदेरियां नाम के प्रोजेक्ट ने मानो इन बुनकरों की जिंदगी में खुशहाली भर दी हो। यहाँ लूम तो है ही, लेकिन साथ ही एक कंप्यूटर डिजाइनिंग लैब और इंटरनेट लैब भी है। 29 वर्षीय मोहम्मद फुरकान 5वीं पीढ़ी के बुनकर हैं और अब कंप्यूटर पर चंदेरी साड़ियों पर लगाने वाले डिजाइन बनाते हैं। जो डिजाइन हाथ से बनाने में दिनों लग जाते थे, अब वही डिजाइन बनाना फुरकान के लिए कुछ ही घंटों का खेल है।
कंप्यूटर से बनाने में टाइम हमारा बचा है। जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं, अगर वो 30 मिनट में हो रहा है, तो वो हाथ से करने में करीब 2-3 घंटे में होता था।
चंदेरी में रहने वाले बुनकरों की पिछली पीढ़ियां सेठ को ही सब कुछ मानती थी, लेकिन अब नौजवान बुनकर तकनीक और इंटरनेट के जरिए अपना अस्तित्व खुद ही बना रहे हैं। फुरकान और उनका परिवार इस बात का प्रमाण हैं। फुरकान एक संयुक्त परिवार में रहते हैं जिसमें 16 सदस्य हैं और इन 16 सदस्यों में से 10 सदस्य ऐसे हैं जो साड़ी बुनने का काम करते हैं। इनके घर में घुसते ही जो पहली चीज़ मैं देखती हूँ वो ये कि फुरकान अपने चाचा के साथ एक बड़े से लकड़ी के चरखे पर धागा बुनने का काम कर रहे हैं। घर के हर कमरे में एक लूम लगा हुआ है जिस पर इनके परिवार के सदस्य साड़ियाँ बुनते हैं।
और इस कमरे में फुरकान की बहन है, छोटी बहन है, वो इस वक्त एक साड़ी बुनने का काम कर रही है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, गुलाबी और पीले रंग की। और घर के दूसरे कमरे में फुरकान के भाई उस टूल को शार्प कर रहे हैं जो लूम में धागा बुनने के काम आता है। फुरकान के चाचा बताते हैं कि एक दौर था जब चंदेरी की साड़ियों के व्यापार में बहुत मंदी आ गई थी और बुनकरों ने दूसरे शहरों का रुख करना शुरू कर दिया था।
बहुत से लोग चंदेरी छोड़ के कहीं कोई राजस्थान चला के निकल गया था, कोई MP में, मतलब भोपाल, कोई कहीं चले गए थे। बहुत कम हो गया था इसका काम, कोई करते नहीं था, मजदूरी नहीं होती थी, तो बाहर निकल गए थे। इसके बाद में फिर इसमें उठाव आया तो फिर जागीता हो गया, तो फिर जो वापसी जहाँ से गए हुए थे लोग, तो फिर कहीं कहीं वापस आ गए। और आज कंप्यूटर का टाइम है,
तो यानी अब आपको डिज़ाइन के लिए दिनों तक वेट नहीं करना
पड़ता। नहीं, अब कुछ नहीं करना पड़ता उसके से। अगर मान लो हमें अगर कोई डिज़ाइन की ज़रूरत है तो हमने फुरकान से बोला कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, तो उन्होंने मतलब जो है 2 घंटे में या 3 घंटे में मतलब बना के दे दिया।
यानी आमदनी अब बढ़ गई।
आमदनी थोड़ी बढ़ गई है, तो काफ़ी आमदनी बढ़ी है।
साड़ियाँ बनाने का काम तो बढ़ा ही है, लेकिन अब बुनकरों को अपना माल बेचने के लिए शहरों में जाकर दर दर भटकना नहीं पड़ता। चंदेरी के बुनकर धीरे धीरे ई रिटेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं, यानी वे इंटरनेट के जरिए अपना माल बेच रहे हैं।
बाहर जाने के बाद भी आदमी को 15-20% से साड़ी पे ज्यादा नहीं मिलता है। उसका खर्च, रहने का, खाने पीने का, आने जाने का, जो भी है, सबको अगर वो काटेगा तो एक साड़ी पे जो भी बेचता है 15-20% ही उसको मिलेगा। और जब हम यहीं बैठे बैठे उसको घर पे दे रहे हैं तो लोग बाहर क्यों जाएंगे। जैसे कि कोई पार्टी है, अगर उसे अपनी पसंद का कोई डिजाइन बनाना है तो हमें मेल के जरिए, फेसबुक के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हमको इमेज भेज देते हैं, तो उससे उसका टाइम बचा, जो साड़ी बनाई वो एक बार में उसकी मार्केट में बिक गई।
चंदेरियान प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे मुजफ्फर अहमद अंसारी उर्फ कल्ले भाई ने बताया कि इंटरनेट के आने से बुनकरों को अपनी साड़ियों के सही दाम और अपनी कला की अहमियत भी बखूबी मालूम हो गई है।
सेट का जमाना था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज थी जो हक एक्चुअल में मजदूर का है वो उस तक नहीं पहुंचता था। सेठ लोग क्या करते थे कि वो 4 महीने जो है ना उसमें बुनवाते तो थे लोगों से, लेकिन मजदूर का पेट काट देते थे। ये कहते थे कि बाजार मद्दा है, बहुत मद्दा है, तो इनके हक इनको मालूम नहीं थे दरअसल कि हमारे हक क्या हैं। तो ये हक बताया तो अब लोग जो है ना सेठ के पास, अब उल्टा हो गया, अब ये हो गया कि अब सेठ के पास सेठ आता है कि आप हमारा लूम लगा लीजिए, तो वो कहता है कि आपको अब उल्टा जो है ना मजदूर हावी हो गया उनको।
अब जब चंदेरी का बुनकर मजदूर नहीं बल्कि खुद व्यापारी हो गया है तो चंदेरी साड़ियों के रंग एक बार फिर खिल उठे हैं। इसके एक एक रेशमी धागे की चमक मानो बुनकरों की चमकी किस्मत का प्रतिबिंब हो। शालू यादव, BBC, चंदेरी, मध्य प्रदेश।
आपको चंदेरी से शालू यादव की ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा।
भरोसा वही, बस जमाना बदला। राजनीति वही, बस शासक बदला। BBC हिंदी वही, बस प्रोग्राम बदला। BBC हिंदी के कार्यक्रम अब नए रंग और नए कलेवर में। एक जून से नमस्कार भारत का दूसरा अंक हो जाएगा विश्व भारती और दिन भर का दूसरा अंक कहलाएगा घटना चक्र। सुनिए सुबह 6:30 से 7 तक नमस्कार भारत और 8 से 8:30 विश्व भारती, शाम 7:30 से 8 दिन भर और 9:30 से 10 तक घटना चक्र।
और कल फिल्म रिलीज हुई है वेलकम टू कराची, कितना धमाल दिखा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर, जानते हैं फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी से।
ओ यहाँ से वहाँ से चल बच के निकल जा रे, वरना किसी तरह ना जान बच पाएगी।
इस हफ्ते रिलीज हुई बड़े पर्दे पर फिल्म वेलकम टू कराची, इसमें नजर आ रहे हैं जैकी भगनानी और अरशद वारसी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आशीष आर मोहन और प्रोड्यूस किया है जैकी भगनानी के पापा वाशु भगनानी ने। इस वक्त स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी। नम्रता जी, ये बताइए आपको कैसी लगी ये फिल्म? फिल्म कहती तो वेलकम टू कराची है, वेलकम करवाती है हम लोगों को थिएटर में, लेकिन वेलकम होने से ज़्यादा मुझे लग रहा था कि किसी तरह से भाग निकलो थिएटर से। अगर एक फिल्म अगर हम देखें ना, तो एक कॉमेडी जो आपको हंसा ना पाए, आई थिंक उससे बुरा एक्सपीरियंस, उससे बड़ा टॉर्चर सिनेमा हॉल में और कोई नहीं हो सकता। पूरे टाइम फिल्म इतनी उबाऊ और बोरिंग और इतनी अनफनी लगी मुझे कि मतलब आप मुँह सुझा के कॉमेडी देखेंगे तो क्या फ़ायदा वाली बात है। तो फिल्म कतई पसंद नहीं आई, बहुत इरिटेट किया और बहुत बोर किया।
ओ कहंदी मम्मी शाम को जल्दी आ जाना, रोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ले लल्ला लल्ला लोरी।
अरशद अपने में बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मुझे ये लगा इस फिल्म में जैसे ना स्लीप वॉक करते हैं ना, इज अ स्लीप वॉक थ्रू द परफॉर्मेंस, उसमें कुछ जान नजर नहीं आई ज्यादा। जैकी दूसरी तरफ कुछ जरूरत से ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करी और वो इतने ज्यादा ओवर द टॉप हो गए हैं कि जो इसमें बैलेंस आना चाहिए वो नहीं रहा। फिल्म में दानिश हुसैन भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और इसके अलावा बहुत सारे और एक्टर हैं जो कि बहुत बहुत बुरे हैं। कहानी सिंपल सी है कि एक बोट क्रैश हो जाता है जिसमें कि अरशद वारसी और जैकी भगनानी कराची के शोर्स में पहुंच जाते हैं। कराची काफी फेक है, मैंने सुना कि ब्रैडफोर्ड में शूट किया गया था यूके में वो। फिर आगे क्या होता है, किस तरह से वो वापस पहुंचते हैं इंडिया, डम्ब और डम्बर से इंस्पायर्ड है। इसको तो एक स्टार से ज्यादा देने का कोई कारण, कोई लॉजिक नहीं बनता है।
तो फिल्म समीक्षक नम्रता जोशी से बात कर रही थी सुमरनप्रीत कौर। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का, और अमल सभी अखबारों पर नजर डाल चुके हैं। अमल, क्या कहते हैं आज के अखबार?
सुशीला, आज अगर अखबारों की समीक्षा की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खबर को लीड बनाया है, लेकिन जो दोनों के विषय हैं वो अलग हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि केजरीवाल सरकार अपने भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते के लिए जासूसी उपकरण खरीदना चाहते हैं, जिसके बाद विरोधी पार्टियों ने उनकी आलोचना की है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि आम आदमी पार्टी में जो है वो काफ़ी अब नर्म पड़ गई है, और बाबुओं की पोस्टिंग को लेकर अब वो उपराज्यपाल से राय लेने को तैयार है।
जी, तो ये स्नूपिंग का जो मामला चल रहा है, ये काफ़ी कई दिनों से चल रहा है, केजरीवाल कई दिनों से जो है सुर्खियों में छाए हुए हैं।
जी सुशीला, और वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने खास स्टोरी की है अरुणा शानबाग के साथ जो दुष्कर्म करने वाले जो सोहन लाल हैं उन पर खबर प्रकाशित की है। इस खबर को उन्होंने हेडिंग दी है शानबाग पर हमला करने वाले जीवित कहता है कि मैं स्मृतियों से थक गया हूँ और मरना चाहता हूँ। खबर के अनुसार सोहन लाल फिलहाल हापुड़ के परपा में हैं और कहते हैं कि उन्हें जो कुछ भी हुआ उससे काफ़ी पछतावा है और वो अरुणा और भगवान दोनों से माफ़ी मांगना चाहते हैं।
जी
जी, वहीं नव भारत टाइम्स ने अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर खबर प्रकाशित की है। खबर के अनुसार फिलहाल LG की मुहर ज़रूरी, ये इस हेडिंग के साथ उन्होंने खबर ली है। और वहीं हिंदुस्तान हिंदी भी लिखता है कि केजरी को कोर्ट से झटका, हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अनुसार मेट्रो शहरों में जो दिल्ली की जो गर्मी है वो सबसे अधिक खतरनाक है, और इसमें IIT दिल्ली के एक शोध का जो है वो हवाला दिया गया है। और साथ ही लगभग सभी अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण और अमर उजाला ने भारत की जो विकास दर है उसकी खबर को सुशीला काफ़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और खबरों के अनुसार वित्त वर्ष की जो चौथी तिमाही में भारत की GDP की दर जो 7.3 रही है वो जो चीन से भी ज़्यादा है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए अमल। और बीते हफ्ते हुई खेल की प्रमुख खबरों को खेल और खिलाड़ी में लेकर आए हैं आदेश कुमार गौत।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत बैडमिंटन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में ही हारकर बाहर हो गई। इसके साथ ही भारत की चुनौती भी पूरी तरह समाप्त हो गई। पिछले साल की विजेता साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में ही 5वीं वरीयता हासिल। चीन की शिजियान वांग से केवल 41 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-13 से हारी। उनसे पहले पुरुष एकल वर्ग में 4थी वरीयता हासिल भारत के श्रीकांत भी चीनी चुनौती का सामना नहीं कर सके और वो दूसरे दौर में ही तियान हाउवेई के हाथों 18-21, 21-17, 21-13 से हार कर बाहर हुए। महिला युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा का अनुभव भी दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ सका और उन्हें इंडोनेशियाई जोड़ी के हाथों 21-14, 21-10 से हार का सामना करना पड़ा। और अब बात टेनिस की। रोला गैरा की लाल बजरी पर खेले जा रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल महिला युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने दूसरे दौर में फ्रांस की स्टेफिने फॉरेज और अमांदीनी हेसे की जोड़ी को 6-3, 6-4 से मात दी। तो पुरुष युगल वर्ग में 10वीं वरीयता हासिल जोड़ी भारत के लिएंडर पेस और कनाडा के डेनियल नेस्टर ने जर्मनी के आंद्रे बिगबैन और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के जूलियन लॉन को 7-6, 6-2 से हराया। लेकिन मिश्रित युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल भारत की सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार ब्राजील के ब्रूनो सोरस पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए, परंतु लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस पहले दौर की बाधा पार करने में कामयाब रही। पुरुष एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर, फ्रांस के गिल सिमोन, 8वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका, रूस के तेमुराज गाबाश्विली और जापान के केई निशिकोरी तीसरे दौर की बाधा पार करने में कामयाब रहे। महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल रूस की मारिया शारापोवा, चेक गणराज्य की लूसी सफारोवा, स्पेन की गार्बिने मोरुगुजा, यूक्रेन की एलिना स्वीटोलिना, रूस की एकातेरिना माकारोवा और सर्बिया की एना इवानोविच भी चौथे दौर में पहुंच गई हैं। वैसे 9 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन राफेल नडाल को भले ही यहाँ 6ठी वरीयता दी गई है, लेकिन वो तो इसे ही अपना पसंदीदा टूर्नामेंट मानते हैं।
Every tournament is different, every year is different. No issue about that.
मैं हर टूर्नामेंट में अच्छा खेलता हूँ, पर यहीं फ्रेंच ओपन में आकर सहज महसूस करता हूँ और जीत जाता हूँ, नडाल के शब्द। देखना है नडाल की चुनौती इस बार कहाँ तक पहुँचती है। और अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच कल से लीड्स में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर न्यूजीलैंड ने स्टंप के समय तक 8 विकेट खोकर 297 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम ने 84 और विकेटकीपर बल्लेबाज ल्यूक रोंकी ने 88 रन बनाकर न्यूजीलैंड को संकट से उभारा। कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने भी 41 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 83 रन देकर 3 और एंडरसन ने 43 रन देकर 2 विकेट लिए। मार्क वुड ने भी 62 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। उधर पाकिस्तान ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से मात दी। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 269 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज और कप्तान अजहर अली के 102 और हारिस सोहिल के नाबाद 52 तथा असद शफीक के 39 रनों की मदद से 47.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने सिकंदर रजा के नाबाद 100 और चामू चिभाबा के 99 रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 268 रन बनाए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
तो खेल और खिलाड़ी लेकर आए थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सेप ब्लैटर को एक बार फिर फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। शुक्रवार को इस पद के लिए हुए चुनाव में उन्हें 5वीं बार फीफा का अध्यक्ष चुना गया। अमेरिका में ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रॉस एल्बर्ट नामक इस व्यक्ति ने द सिल्क रोड नाम से वेबसाइट बनाई थी, जिसमें हर तरह की ड्रग्स बेची जाती थी। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि वो चरमपंथी संगठन बोको हराम से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उन 200 लड़कियों को भी छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे जिनका बोको हराम ने अपहरण कर लिया था। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आपसे 8 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त।